ओम शांति। भोपाल ग्रुप, भोपाल वाले राजधानी में क्या तैयारी करेंगे? भोपाल वाले नगाड़ा बजाएंगे। वैसे भी जब तक नगाड़ा नहीं बजेगा तो तैयारी कैसे होगी? तो भोपाल वाले बहुत जोर शोर से चारों ओर नगाड़ा बजाएंगे। क्या नगाड़ा बजाएंगे? कौन सा नगाड़ा बजाएंगे? बाप आ गया वर्षा ले लो। क्या नगाड़ा बजाएंगे? बाप आ गया वर्षा ले लो। सुनो सुनो सुनो। ये नगाड़ा बजाएंगे। नक्शे के हिसाब से भी मध्य प्रदेश है ना। वैसे भी जब कोई आवाज फैलाना होता है तो बीच में खड़े होकर फैलाएंगे ना, तो खूब नगाड़ा बजाओ। बजा भी रहे हैं और बजाएंगे भी। क्या अर्थ है इसका? बजा भी रहे हैं और बजाएंगे भी। सबको खुश नसीब बनाने की क्या सुनाओ? खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी सुनाने में होशियार हो ना। सबको खुशखबरी सुनाना, यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्तव्य है। क्योंकि चारों ओर दुख अशांति की खबरें सुनते रहते हो, तो ऐसी आत्माएं खुशखबरी सुनकर कितनी खुश होगी? सबके दिल से निकलेगा क्या? मेरा बाबा और धन्यवाद शुक्रिया। और क्या निकलेगा? आशीर्वाद। अभी छुड़ा दो। सबके दिल से निकलेगा कि वाह परमात्मा बच्चे वाह। तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य करना ही है, हुआ ही पड़ा है। करना ही है, हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बनना है। राजधानी भी तैयार हुई पड़ी है, प्रजा भी तैयार है। आप सिर्फ क्या करते जाओ? नगाड़ा बजाते जाओ तो तैयारी हो चुकी है, प्रजा भी तैयार है। आप सिर्फ ठप्पा लगाते जाओ, बस स्टैंप। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं भोपाल से उनसे कि भोपाल वाले राजधानी में क्या तैयारी करेंगे? भोपाल वाले नगाड़ा बजाएंगे। वैसे भी जब तक नगाड़ा नहीं बजेगा तो तैयारी कैसे होगी? तो भोपाल वाले बहुत जोर शोर से चारों ओर नगाड़ा बजाएंगे। क्या नगाड़ा बजाएंगे? आप आ गया वर्षा ले लो। और क्या नगाड़ा बजाएंगे?
सुनो सुनो
सुनो सुनो। क्या मेरे भारत की भूमि पर छाया माया का साया है, अब नया सवेरा लाने क्या गीत, भारत में शिव आया है। तो हम अगर नगाड़ा बजाए कि भगवान आ गया तो वो क्या कहेंगे? पहले यही गीत थे, वो कहेंगे हमारे इधर भी आया है, आप उधर आ जाओ। आर्टिफिशियल बहुत हो गया है, फॉल्स गॉड्स। वो कहेंगे उधर क्या, हम ही भगवान है। कोई तो ये कहेंगे हम ही हैं, कोई कहेंगे हमारे इधर आ गया है। तो बाप आ गया वर्षा ले लो, ये नगाड़ा बजाओ पर धूमधाम से। नक्शे के हिसाब से भी मध्य प्रदेश है। वैसे भी जब कोई आवाज फैलाना होता है तो बीच में खड़े होकर फैलाएंगे ना। देखो मध्य प्रदेश से बात कर रहे तो बीच की बात है, और दिल्ली से बात करते तो राजधानी है। तो खूब नगाड़े बजाओ। बजा भी रहे हैं और बजाएंगे भी। सबको खुश नसीब बनने की खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी सुनाने में होशियार होना। सबको खुशखबरी सुनाना है, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबको गुड न्यूज देनी है, खुशखबरी सुनानी है। कौन सी खुशखबरी? एक तो बाप आ गया है और वर्षा ले लो और नई दुनिया आने वाली। इस दुनिया का अंत होने वाला है। अभी कल भी कहा था ना, इस दुनिया में ना तो शांति है और ना ही प्रेम है। एक सेकंड की शांति के लिए भटकते फिर रहे हैं। तो ऐसी आत्माओं को प्रेम से शांति का अनुभव कराओ, अनुभव कराओ, संबंध जोड़ो प्रेम का, उससे शांति का अनुभव कराओ। तो खुशखबरी सुनानी है। एक तो बाप आ गया, नई दुनिया आने वाली है और क्या खुशखबरी सुनाओ? मौत आने वाला है, वापस घर चलना है और भारत जगत गुरु बनने वाला है, अध्यात्म की दुखों का अंत होने वाला है, नई राजधानी स्थापन हो रही है, खुशियों की दुनिया आने वाली है, सुख के पहाड़ खड़े होने वाले हैं, राजा रानी बनने का कौन? हम सब सोने की चिड़िया बनने वाली है। दुनिया वालों को क्या सुनाना है? आज भगवान आ रहा है, परमात्मा प्यार प्राप्त करने का ये समय है। भगवान आ रहा है नहीं, अभी क्या कहना? आ गया नहीं, आ चुका है नहीं, जा रहा है। वो कहेंगे पहले क्यों नहीं सुनाया? कल भी कहा था ना इंजीनियर्स को, हम जींस को, वकील को कहा था ना कि उनको बताओ। नहीं तो कहेंगे हमको भी नहीं बताया। तो भगवान आ रहा है, भगवान आ गया है, भगवान आ चुका है नहीं, भगवान जा रहा है,
जाने का समय हो गया।
उसके जाने का समय आ गया है। लोग कहेंगे अभी बता रहे होंगे,
बोलेंगे इतने सालों से आ चुके हैं, जा रहे हैं, सालों और लग जाएंगे, पता नहीं कब जाएगा।
जाता है बोलता है पर जाता तो नहीं ऐसे। तो सबको खुशखबरी सुना। और क्या खुशखबरी सुनाएंगे सबको? समय अब है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर प्रारब्ध जमा करने का समय अब है। नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से पुरुषार्थ करो और आ जाओ सबसे बड़े तीर्थ पर। आ जाओ, अब तक बहुत तीर्थ यात्राएं कर ली, अब इस तीर्थ पर आ जाओ। अब तक बहुत सुन लिया मनुष्यों का, अब भगवान का सुनो। अब तक बहुत शास्त्र पढ़ लिए, अब उसके वचन सुनो। सारी थकान मिटाने आया है। बाइबल में वाक्य है, कम ई ऑल ई ऑल दैट लेबर एंड आई शैल गिव दी रेस्ट। आ जाओ वो सब, आ जाओ जो थके हुए हैं, जो थके मांदे हैं, मैं उन्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। माय योक इज माइल्ड, मेरा जो भार है, मेरा जो वजन है बहुत कम है। कैरी मी, मुझे अपने कैरी माय क्रॉस, मेरा जो क्रॉस है उसको कैरी करो। इधर से आ जाइए आशीष भाई, इधर। तो मेरा वजन बहुत हल्का है, वो सब जो थके हैं, कमी ऑल ई ऑल दैट लेबर, जो लेबर कर रहे हैं, आई शैल गिव दी रेस्ट, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो भगवान भी कह रहा है कि जो थक चुके हैं यहाँ आ जाओ, थकान मिटाने मैं आया हूं। तो सबको क्या खुशखबरी सुनानी है? और भारत की सच्ची सेवा करने आ जाओ। अब तक मनुष्यों की सेवा की, अभी सच्ची सेवा करने आ जाओ। सच्ची सेवा से क्या सुख आनंद प्राप्ति होती है, वो आनंद का अनुभव करने आ जाओ। और क्या खुशखबरी सुनाएंगे दुनिया वालों को? अपनी बैटरी चार्ज करने आ जाओ। ताजा ताजा है बिल्कुल, अभी अभी जस्ट अपने बाप से मिलने आ जाओ। अब तक भगवान को तुमने क्या कहा? अपना मालिक कहा, स्वयं को दास कहा, अभी पितृ भावना का अनुभव करने आ जाओ, फादरहुड का अनुभव करने आ जाओ। उसको अब तक मनुष्य के पास गए, मनुष्यों को अपना गुरु बनाया, अब सीधा भगवान को अपना गुरु बना दो। गुरुओं का गुरु, पतियों का पति और पिताओं का पिता आ गया है।
डायरेक्ट बच्चा,
वो तो स्नेही बनाओ, वो तो हमारे कर्तव्य है, उनको क्या खुशखबरी सुनाओ। पढ़ाई करने आ जाओ, अब तक उनसे पढ़ाई की, अभी ये पढ़ाई पढ़ने आ जाओ। अभी भक्ति का फल देने आया है भगवान। जन्म जन्म जो भक्ति की, जन्म जन्म उसको पुकारा, उसके लिए प्यासे थे, क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, अब वो आया है तो ले लो साहब कुछ।
जिन आंखों से भगवान को देखा नहीं जाता है वो कैसे
जो जिस भगवान के लिए गायन है कि उसे देखा नहीं जाता है उसे देख लो। जिसके लिए गायन है कि जिसे सुना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, उसको समझ लो, देख लो, जान लो, सुन लो, महसूस कर लो, अनुभव कर लो, संबंध जोड़ दो, सर्व संबंध, प्रीत की रीत निभा लो, एक संबंध में नहीं सर्व संबंध। एक मुरली चली थी ना ओम शांति भवन में, जिसमें बाबा ने कहा था, कभी तुमने सोचा था बाप आया है, तुमको उठाता भी बाप है और तुमको सुलाता भी बाप है, तुमको खिलाता भी बाप है, तुमको पिलाता भी बाप है, सब कुछ तुम्हारे लिए बाप कर रहा है। अगर दुनिया वाले कहे कि क्या भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है तो उनको क्या कहो, इसका भी उत्तर बाबा ने उस मुरली में दिया है,
हमारे लिए ही है।
दुनिया वाले तुमसे कहते क्या भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है कि तुमको उठाने आता है, ऐसे क्या है तुम में, तुमको सुलाता भी है, तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे साथ घूमता है, तो उनको कहो यस हाँ वो हमारे लिए इस समय खाली बैठा है, ऐसा उनको कह दो। ऑन ड्यूटी, ऑन गॉडली सर्विस, 24 आवर्स, 24/7। आप बन जाओ उसके, हम बन गए, आप बन जाओ
24/7।
वो इंग्लिश में कहते हैं राउंड द क्लॉक। तो जैसे हम उसके बन गए हैं, तुम भी उसके बन जाओ।
वो इंतजार कर रहा है आप।
इंतजार कर रहा है कैसे, बाहे पसारे, बाहे पहला के बाहे पसारे, आ जाओ, आह्वान कर रहा है, आ जाओ हे देव कुल की महान आत्माओं, कहाँ हो, आ जाओ। तुमने बुलाया था मुझे, मैं आया हूँ तुम्हारी पुकार सुनकर, कॉलिंग आउट, तुमने पुकारा मैं आया। पत्ता पत्ता आ जाओ, जो जो मेरे पत्ते हैं, मेरे झाड़ के पत्ते, आ जाओ। तो भगवान आया है और पुकार रहा है, आह्वान कर रहा है,
ये वही समय है, भगवान आया है, आपको आह्वान कर रहे
हैं। ये ऐसा श्रेष्ठ समय है, कल्प का ये संगम युग है, कल्प का संगम युग, अभी सृष्टि परिवर्तन की वेला है, सत्ता पलटने वाली है, हे राजनीति नीतिज्ञ आ जाओ, बहुत बड़ा धक्का लगेगा उनको, सत्ता पलटने वाली है। कल कहा था ना, पांडव अज्ञातवास में रहे परंतु नशा था कि हम सेवा, कौन सी सेवा में, गुप्त सेवा में, परंतु नशा था कौन सा, कि हम राज्य परिवर्तन करने वाले, राज्य लेने वाले है, तो सत्ता पलटने वाली है, तो राजनीति में जो भी है सब सोच लो, समझ लो, आ जाओ, आ जाओ। हम तो बिगड़ गए हैं, वो जैसे महाराष्ट्र में एक संत है, उसका एक आमी बिगड़ लो तुम ही बिगड़ाना, हम तो बिगड़ गए हैं, अब तुम भी बिगड़ जाओ। कितना अच्छा लिखा है उसने, दोरिया संगे फूले बिगड़ ली, फूले बिगड़ ली दोरियाची झाली, धागे के साथ फूल जो है वो बिगड़ गए, धागे के साथ फूल बिगड़ गए और धागे के हो गए। सागरा संगे नदी बिगड़ ले, नदी बिगड़ ली सागराची झाली, सागर के साथ में नदी बिगड़ गई, अब सागर की हो गई। कृष्णा संगे गोपी बिगड़ लिया, कृष्ण के साथ साथ गोपी बिगड़ गई, गोपी बिगड़ लिया कृष्ण ची झाल्या। विठला संगे तुका बिगड़ला, वो तुकाराम लिखता है कि विठल अर्थात कृष्ण के साथ मैं बिगड़ गया हूँ, अब मैं बिगड़ गया विठला ची झाला। आम ही बिगड़ लो तुम ही बिगड़ाना, अब हम तो बिगड़ गए, अब तुम कब बिगड़ोगे। बिगड़ना, हाँ वो भी है उसमें वो भी कह सकते, वो भी कह सकते। तो परमात्मा प्रेम में रंग जाना, कल याद प्यार में कहा था ना, किन रूहों को याद प्यार, बाप के रंग में रंगने वाली आत्माओं को, रूहानी रूहों को बाप दादा का याद प्यार। ऐसे रूहे जो रंग में रंग गई है, तो हम में रंग, संग में रंग गई है, तुम भी रंग जाओ, खो जाओ, डूब जाओ इस सागर में। ये सागर ऐसा है कि इसमें डूबते नहीं है, मरते नहीं है डूबकर, मरते भी है वैसे तो, पर नया जन्म भी होता है साथ साथ। तो सबको खुशखबरी सुनाना, आओ बहुत अलग रहे, कब तक अलग रहोगे? और हमको भी बिगड़ रहा है तो सबको खुशखबरी सुनाओ, ऐलान कर दो। गीते ना आज हिमालय की चोटी पर जाकर ऐलान करो, आगे कौन सा गीत है? आज हिमालय की चोटी पर खुलकर ये ऐलान करो, आगे बोलो। अच्छा गीत है, जागो ए जगवाले, भारत में आया भगवान कहो, भाग्य बनाने की घड़ी आए, कहीं बीत ना जाए सोने में। शिव गीत है ना कि नहीं है? पुराना अच्छा गीत है। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहो, है ना गीत को शिव पिता का संदेश। तो सबको खुशखबरी सुनाओ, क्या खुशखबरी सुनाओ? बाप आ गया है, वर्षा ले लो, आ जाओ, ऐसी खुशखबरी सुनाओ। यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्तव्य है, जो तुमने पाया आप दूसरों को दो, जो तुमने पालना ली, अब क्या पालना लेते ही रहोगे क्या? अभी देने का समय है। तो ये सब श्रेष्ठ कर्तव्य, क्योंकि चारों ओर दुख शांति की खबरें सुनते रहते हैं, जहां भी खबरें हैं दुख शांति की खबरें हैं। तो ऐसी आत्माएं खुशखबरी सुनकर कितनी खुश होगी, खुशी होगी उनको, सब सबके दिल से निकलेगा कि वाह परमात्मा बच्चे वाह। तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य करना ही है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त करना है। राजधानी भी तैयार हुई पड़ी है, प्रजा भी तैयार है, आप सिर्फ ठप्पा लगाते जाओ बस। अच्छा फिर अगला ग्रुप है कर्नाटक। कर्नाटक वाले क्या करेंगे? कल भी कहा था कर्नाटक वालों से मिले थे, राजों को ज्ञान के राजों में चलने वाले हैं, इसके लिए कभी नाराज नहीं होते, और नजदीक बैठने में होशियार है, तो सीट नजदीक लेने में होशियार हो जाओ। कर्नाटक की धरती की क्या विशेषता है और आंध्रा की धरती की क्या विशेषता है? फिर वहां पर भी भावना, वहां पर भी भावना, साउथ की सारी धरती में भावना है, एक दो से जास्ती। बहुत है वहां पर जो है लंग, लंग क्या कहते हैं, लंगे लिंगायत, वो बहुत ज्यादा है वहाँ पे। दो प्रकार होते हैं, एक है अलवर, एक है लिंगायत। अलवर अर्थात वैष्णव, जो साउथ के वैष्णव है, दक्षिण के वैष्णव, उन्हें अलवर कहा जाता है। और लिंगायत जो है वो शैव होते हैं, शिव के भक्त, जो शिव वाले होते हैं वो शाक्त भी होते हैं, शक्ति की भी पूजा करते हैं, तो वो देवी। एक तरह के सांप्रदायिक शैव, एक है शैव, एक है शाक्त, एक है गणपत्य, एक है शक्ति, एक है वैष्णव, पांच टोटल। एक सूर्य के उपासक, शिव के उपासक, शक्ति के उपासक, गणपति के उपासक और शक्ति के उपासक, ऐसे पांच प्रकार की भक्तियां है। तो साउथ में शिव की पूजा सबसे ज्यादा है। अगर देखा जाए, अगर भक्ति का इतिहास अगर स्टडी करो तो भारत में भक्ति का जो शुरुआत हुई है वो साउथ से हुई है। ऊपर तो बाद में आई है भक्ति, ये भक्त तो सब बाद में आए, तुलसीदास और सूरदास और मीरा चैतन्य महाप्रभु ये सब बाद में आए, पर भक्ति की जो शुरुआत है वो नीचे से है, साउथ से हुई है। और सबसे पहले जैसे बाबा मुरलियों में कहते शिव की अव्याभिचारी भक्ति। ये कृष्ण के मंदिर तो अभी अभी बनने लगे बाद में, पहले कृष्ण के मंदिर तो थे ही नहीं, कृष्ण और राधा के कंबाइंड रूप के मंदिर तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो तो बहुत बाद में बनने चालू हुए। पहले तो बस शिव की ही भक्ति थी और कोई दूसरी भक्ति थी नहीं। हाँ, एकदम ऐसे पावरफुल भक्त।
घर में पानी पिए तो फिर घर में ही आके पानी
पीना। तो कर्नाटक की धरनी की क्या विशेषता है? बाबा कहते भावना वाले ज्यादा है, तो भावना प्रधान आत्माएं क्या करेगी, और भगवान को तो वही पसंद है भावना। झूठे भक्तों से पसंद नहीं है, शास्त्रों की बातें सुनाने वाले भक्तों से इतने पसंद नहीं है। भावना का भूखेला है, उसे भावना की भूख है। जो उसे अति प्यार से पुकारता है उसके पास वो तुरंत भाग के जाता है। आत्माओं में श्रेष्ठ भावना पैदा करने के निमित्त बनेंगे, ये बाबा कह रहे कर्नाटक वालों को कि आत्माओं में श्रेष्ठ भावना पैदा कर दे। बाबा जो कार्य कर रहा है बुद्धि के स्तर पर बातें नहीं चल रही है, दिमाग के स्तर पर नहीं है, ये दिल के स्तर पर है, हृदय को देखता है वो। तो आत्माओं में श्रेष्ठ भावना पैदा करने के निमित्त बनेंगे। जैसे धरनी की विशेषता है वैसे चारों ओर सारे विश्व को तैयार करने के लिए भी सभी में श्रेष्ठ भावना शुभ भावना उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? जैसे धरनी की विशेषता है भावना, वैसे ही चारों ओर सारे विश्व को तैयार करने के लिए सभी आत्माओं में श्रेष्ठ भावना शुभ भावना पैदा करेंगे, फीलिंग्स इमोशंस। श्रेष्ठ भावना क्या है? अब कौन सा भाव सब में पैदा करेंगे कि हम बाप के और बाप हमारा, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। इस श्रेष्ठ भावना से सभी भावना का फल सहज प्राप्त करेंगे। भावना का फल बहुत जल्दी मिलता है, जितना प्यार से दिल की गहराई से प्राणों से अंतकरण के अंतर की आवाज से उसको पुकारा जाता है तो ये आवाज सीधा उस तक पहुंचती है सच्चाई से। अगर उसमें थोड़ी भी मिलावट है थोड़ी भी गड़बड़ है तो वो आवाज उस तक नहीं पहुंचती। तो ऐसी सहज सेवा करो जो भावना उत्पन्न करे और भावना का फल सहज प्राप्त करो। कितने लोग यहाँ आते हैं इतने भाषण सुनते हैं, भाषण उनको याद नहीं रहता है। क्या याद रहता है? किसने सुबह सुबह चाय दी थी, किसने उनकी सेवा की थी, किसने उनके लिए कुछ भोजन दिया था, किसने क्या छोटी छोटी जो सेवाएं उनकी जो की थी उन्होंने, उनको वो याद रहता है सबको। हमारे हॉस्पिटल में भी पेशेंट आता है, स्टाफ उसको ट्रीटमेंट करती है, डॉक्टर देखते हैं, सब उसको ट्रीटमेंट करते, पर याद कौन रहता है उनको? ऋषि भाई याद रहते हैं, और कोई याद नहीं रहता है। क्योंकि जाकर पूछने वाला वो था, कुछ उनको गाड़ी अरेंजमेंट करने वाला वो था, गाड़ी तक ले जाने वाला और बाय बाय करने वाला वो था, बाकी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया वो किसी को याद नहीं। वो डॉक्टर को हेलो करने थैंक यू करने कोई नहीं आता है, वो डॉक्टर भूल गया, वो स्टाफ भूल गया, वो बाकी सब भूल गया, एक ही आदमी याद रहा बस, जिसने सच्ची दिल से निस्वार्थ भाव से निरंकारी भाव से जो प्रत्यक्ष स्वरूप है ज्ञान का, वो एक ही आत्मा याद रहती है, बाकी कोई याद नहीं रहता है। परिचय किसने दिया हॉस्पिटल का वो याद नहीं है, पर वो याद है। जहां भावना है वो परमात्मा को प्रिय है।
तीन चार डॉक्टर आए थे, उन्होंने ये बोला कि ऋषि भाई को देखकर क्या है।
रेडीमेड आत्मा है, रेडीमेड। जन्म जन्म के पुण्य जब होते हैं वो जो कहा ना कि उस दिन कहा था ना कि किसी ने थोड़ी सी पी ली और इसको इतना नशा कैसे चढ़े, अरे रात भर पी रहा था। तो कितना भी कुछ करो, आत्माओं को याद वो रहता है किसने हमसे दो मीठे बोल बोले थे, राहत वाले बोल, वो उनको याद रहता है, बाकी और कुछ याद नहीं रहता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भाषण सुने हॉल से बाहर और खलास, तालियां बजाई खलास, कई बहुत बड़े बड़े एक एक घंटे के भाषण दिए लोगों ने, आत्मा का परिचय दिया, परमात्मा का परिचय दिया, ये किया वो किया, और फिर लास्ट में कहा गया किसी एक बुजुर्ग माता से या भाई से कि भाई अपना अनुभव सुना दो, 5 ही मिनट अनुभव सुनाया, वो भी ऐसा कि भाषा भी नहीं आती है, शिव बाबा आती थी और शिव बाबा जाती थी, न पुल्लिंग पता है न स्त्रीलिंग पता है न हिंदी बोलने आती है। ऐसे 5-10 मिनट ही अनुभव सुना दिया, पर ऐसा अनुभव सुनाया कि आत्माओं के जीवन में घुस गया, जीवन का एक भाग हो गया, ऐसा अनुभव सुनाया कि बस वो अनुभव भले ज्ञान में चले न चले, 10 साल पर 10 साल हो गए परंतु वो अनुभव याद है, और एक दिन याद आया उसी अनुभव के आधार से ज्ञान में आई बाद में, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, वो यहाँ की जो चीजें देखी थी वो कुछ भी याद नहीं, क्या भाषण हुए कुछ भी पता नहीं, बस वो उस आत्मा का वो अनुभव, उसकी आंखों से निकले हुए वो आंसू, वो देखा था और लगा था कि ये सत्य है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण था। तो आत्माएं भावनाओं से आती है, तो बाबा कह रहे हैं हम बाप के और बाप हमारा, ये भावना उनमें उत्पन्न हो जाए, वो उनको समझे ना समझे पता नहीं, 5000 साल का चक्र है या 6000 साल का है, कि सतयुग में कितने जन्म होते, त्रेता में कितने जन्म होते, किसको याद है, भक्ति कब चालू है, कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, क्या करना है, सत्य अब है, भगवान अब आया है, उसके बन जाओ, वो ले जाने आया है बस, और कोई लेना देना नहीं है, इसी को समझ लेना है, इतना भी समझ गई तो आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। इस श्रेष्ठ भावना से सभी भावना का फल सहज प्राप्त करेंगे, भावना का फल बहुत जल्दी मिलता है, तो ऐसी सहज सेवा करो, कैसी सहज सेवा, जो भावना उत्पन्न करो और भावना का फल सहज प्राप्त करो, तो ये सेवा करना आता है कि नहीं, कि बस प्रदर्शनी समझाना आता है माता जी, कि बस ओम शांति भवन समझाना आता है, ऐसी सेवा करो कि भावना उत्पन्न हो जाए उनमें, और वो तभी उत्पन्न होगी जितनी वो भावना हम में होगी, हम वही दे सकते हैं दूसरों को जो हम में है, चाहे कितना भी झूठ बोलने का कोशिश करो, पर जो हम में अगर नहीं है तो वो पहुंचेगा नहीं। अभी ये फरिश्ते बन गए हैं क्योंकि भाषा नहीं समझते है। कर्नाटक वाले बाबा को भी पता है, बाबा कह रहे फरिश्ते बन गए लेकिन इशारे से समझ जाते हैं, फरिश्तों को भाषा की जरूरत ही नहीं है, फरिश्ता कोई उस तरह की भाषा में बात ही नहीं करते, फरिश्ता तो उतरते हैं और बस कार्य कर देते हैं, संकल्प से काम करते हैं फरिश्ते, नैनों की भाषा है, भावना की भाषा, ये है अलौकिक रूहानी जीवन की, योगी जीवन की श्रेष्ठ भाषा, शक्तिशाली भाषा, संकल्प की, नैनों की और भावनाओं की, लेकिन इशारे से समझ जाते हैं। तो समझा कर्नाटक वालों को क्या करना है, कि अभी समझ रहे हैं, नहीं समझा है शायद, वो कह रहा है कि समझा है, समझा तो नहीं होगा, चीख चीख के बोल रहा है क्या समझा, गला फाड़ फाड़ के, पर फिर भी नहीं समझता, क्या करे। कितना मैं तुमको समझाऊं, क्या करूं और बताओ। अब और क्या करूं बताओ, फॉर माय सेक, मेरी खातिर केवल, मैं कह रहा हूं ना बस, अब बस मेरी दाढ़ी के लगाओ, अभी मैं कह रहा हूं ये छोड़ दो, अब कि ये सत्य है असत्य जो भी है वो बाजू रखो, मैं कह रहा हूं ना बस, इसके लिए तो मानो कम से कम, मेरी खातिर, फॉर माय सेक। तो कर्नाटक को तो समझा, कर्नाटक वालों को क्या करना है, सहज फल खिलाओ, मेहनत नहीं कराओ, नई आत्मा है, उनमें इतनी पावर ही नहीं है, पहले ही ठगी है। सहज उनको फल डायरेक्ट प्लेट पे दे दो, उनको बना बनाया पका हुआ हॉट। कर्नाटक की धरनी में वृद्धि बहुत सहज होती है, धरनी उपजाऊ है, बीज डालना है बस, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई छूटा है और याद है तो यहां से पत्र लिखो, बताओ और आ जाओ, और जो छोड़ के गए उनको भी, वो तो बड़ा काम है एक, उनको वापस लाना है। तो जैसे आप लोगों की धरनी है वैसे औरों की धरनी को भी तैयार करो और फल की प्राप्ति करो। तो ये था कर्नाटक। फिर और बाबा यहाँ मिल रहे आंध्र प्रदेश, आंध्रा वाले क्या करेंगे? ऐसा कोई नया प्लान बनाओ, जैसे साइंस वाले नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं ना, तो थोड़े समय में प्राप्ति ज्यादा हो तो आंध्र प्रदेश ऐसे ही इन्वेंशन करो जो थोड़े समय में आत्मा अनुभूतियों की प्राप्तियां ज्यादा अनुभव करे। उसका साधन क्या है, जो समय कब लगे और प्राप्ति ज्यादा हो, प्लानिंग बुद्धि, कल भी कहा था ना, रूहानी प्लानिंग बुद्धि। प्लान बनाओ कैसे करना है, क्या होगा, कैसे वृद्धि होगी, कैसे सफल होंगे, जैसे वो उधर प्लान करते हो वैसे वो प्लान इधर करो। इसका साधन है आंध्र प्रदेश की हर ब्राह्मण आत्मा को लाइट हाउस माइट हाउस बनना पड़े, लाइट हाउस बनना पड़ेगा और माइट हाउस बनना पड़ेगा। लाइट हाउस कितना जल्दी लाइट फैलाता है और चारों ओर फैला देता है, तो आंध्र प्रदेश लाइट हाउस माइट हाउस बन, ऐसा प्रकाश फैलाओ जो सबको दिखाई दे कि मैं आत्मा हूं और बाप आ चुका है। आत्माओं को यह अनुभव, हमारी देह दिखे ही ना, हमारी देह आत्माओं को तब नहीं दिखेंगी जब हम अपनी देह से उतना डिटैच रहेंगे। अगर हम अपनी देह से अटैच है तो आत्माओं को भी देह ही दिखेगी। हम अपनी देह से कितना अलग है उतने ही अनुपात से, उसी प्रोपोर्शन से आत्माएं हमें भी आत्मा देखेगी। न्यारी और प्यारी अनुभव होंगी उनको, डिटैच्ड अनुभव होंगी। हम ही अगर भोग विलास में और विलासिता में डूबे हैं तो आत्माओं को आत्मिक अनुभव कैसे कराएंगे, आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव कैसे कराएंगे? आज का स्लोगन भी ऐसे ही कुछ है ना, आत्मा वही ज्ञानी है जो आत्मा अभिमानी है। तो जो हम आत्मा अभिमानी नहीं है, देह अभिमान है, भले हमारे पास ज्ञान है परंतु देह अभिमान है, तो दूसरों को अनुभव कैसे कराएंगे? नहीं हो सकता है। स्वयं को शरीर से कितना अलग कर दिया है, ये शरीर और ये मैं, ये शरीर और ये मैं, ये दो ऐसे क्या कहेंगे उसको, भिन्नता अनुभव, पृथकता अनुभव। सूखा नारियल बन जाए, जैसे अभी गीला नारियल है, सूखा नारियल हिलाओ तो वो अलग, अभी गीला है उसको वो उससे निकालना पड़ता है, इतना 100% कंबाइंड है देह और आत्मा। फोड़ो तो भी वो नहीं निकलता है, उसको वो स्क्रू ड्राइवर से निकालना पड़ता है नारियल को। और जब वो गीला हो जाए, उसमें पानी भी है, और जब वो सूखा हो जाएगा तब ऐसे ऐसे करोगे तो हिलेगा, ये अलग वो अलग, ऐसे अनुभव कि ये मैं अलग ये शरीर अलग। बीमार पड़े हैं तो मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ, ये शरीर बीमार पड़ा है, मैं तो दूसरा हूँ, मैं अलग हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी को जब कैंसर हो गया था तो उनको सबने का गले का कैंसर और बहुत पीड़ा होती थी, तो उनको उनके भक्तों ने कहा आप काली माँ को कहते क्यों नहीं हो कि ये दर्द कम करे? वो कहे ठीक है, वो तो एकदम भोले थे ना, जैसे भक्त कहते थे हाँ ठीक है कह के देखता हूँ, और कहने गए। अभी कैसे कहे, अभी वो कहने के लिए तो देहभान में आना पड़ेगा, वो तो बोले मुझे अपनी अवस्था से नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे उतर के कहना पड़ेगा कि अभी मुझे यहाँ दर्द है। वो तो निरंतर जैसे भाव समाधि में रहते थे, कुछ भी देखा कि तुरंत भाव समाधि में, कुछ भी देखा थोड़ा सा भी, नदी देख ली कि चले अशरीरी, कुछ देख लिया अशरीरी, वो नरेंद्रनाथ गाना गा रहा है भजन गा रहा है अशरीरी, भक्ति की कोई एक गीत सुन लिया अशरीरी, ऐसी अवस्था थी। उनको नीचे लाना पड़ता था अपने मन को, और फिर कहता था कि मुझे अभी थोड़ा जिलेबी दो ताकि मैं देहभान में आऊं, कुछ दो मुझे खाने के लिए, ताकि वो जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस थे रिलेटिव कॉन्शियसनेस पे। और उन्होंने कहा भी था कि मैं एक दीवार पर बैठा हूँ, इधर जैसे ब्रह्म है इधर संसार है, अगर उधर चला जाऊं तो संसार को मेरा कोई फायदा नहीं होगा, मैं तो डूब जाऊंगा, इसके लिए बीच में खड़ा हूँ, ना उधर जाता हूँ ना इधर, संसार के कल्याण के लिए। ऐसी श्रेष्ठ देह से कितनी अनासक्ति थी। वो कहते थे कि मुझे ये जो मेटल है लोहा उसको हाथ लगाता हूं तो करंट लगता है। तो दिखाया विवेकानंद जब छोटे थे नरेंद्रनाथ, उन्होंने परीक्षा ली, क्या किया उनके तकिया के नीचे एक आना रख दिया और देखा चुपके से खिड़की से क्या होता है। अब ये आदमी ढोंगी है। पहले दिन से ही वो कहते थे ये जो आदमी है ये जो इनको दिख रहा है ना ये सब हेलुसिनेशन है, भ्रम है मन के। तो उन्होंने छुपके से देखा, खिड़की से देखा, वो आए और जैसे सोए एकदम धाड़ से उठे जैसे करंट लग गया उनको, और देखा क्या एक तकिया निकाल के तो वो सिक्का था, और बुलाया वो दूसरे को उसका जो सेवक था कि इसको हटाओ यहां से। इतना वो सेंसिटिव था, इतनी ऐसे जैसे प्योर आत्मा थी वो। एक अगर कोई विकारी आदमी आत्मा आके बैठती थी उससे बातचीत करने, तो वो जाने के बाद कहते थे ये जो जगह है फावड़े से इसको खोदो और ये मिट्टी को फेंक दो। अगर कोई खाना कोई लाके देता था खाने के लिए तो कहते थे ये मैं नहीं खाऊंगा, वो जो नरेंद्र है उसको दे दो, वो सब कुछ पचा सकता है मैं नहीं खाने वाला बस तो देह से बहुत डिटैच थी वो आत्मा। जब उनकी शादी हुई तो दिखाया है पत्नी आई पहली रात, अपनी पत्नी को कहा तुम किस लिए आई हो, मैं परमात्मा के मार्ग पे हूं, क्या तुम मुझे गिराने के लिए आई हो। उसने कहा मैं तुमको गिराने क्यों आएंगी, मैं तो तुम्हारे सहायक बनने आई हूं। पहली ही रात अपनी पत्नी को बिठाया, वस्त्र सजाए और देवी के रूप में उसकी पूजा की, मां माना उसे, शारदा मां बनी वो। आज जो रामकृष्ण संघ है उस पे वहां पर उसे मां के रूप में पूजा जाता है। तो कितनी श्रेष्ठ भावना, वो भी जवान थे, वासनाएं जवानी में कितनी उफन पे रहती है जैसे नदी उफन पे होती है ना, सब कुछ जैसे शिथिल हो गया क्योंकि साधनाएं इतनी थी, देह से डिटैचमेंट का इतना अभ्यास था, अलग करने का अभ्यास था कि मैं ये देह हूं ही नहीं। ऐसी जब साधनाएं होगी तब परमात्मा प्रेम वहां उत्पन्न होता है, देहवान में थोड़ी परमात्मा प्रेम उत्पन्न। और जैसे हम हैं वही हम दूसरों को बना सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि लाइट हाउस माइट हाउस बन, ऐसा प्रकाश फैलाओ जो सबको दिखाई दे कि मैं आत्मा हूं और बाप आ चुका है, रोशनी में दिखाई देता है ना कि मैं कौन हूं। तो ऐसे लाइट और माइट हाउस बनकर लाइट और माइट फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। तो कल